नमस्कार भारत, 6 जुलाई दिन शनिवार, मैं हूं वात्सल्य राय। ईरान के परमाणु मुद्दे पर IAEA ने बुधवार को बुलाई विशेष बैठक, अमेरिका ने की थी मांग।
No message to Iran. They know what they're doing. They know what they're playing with, and I think they're playing with fire.
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से कितनी बदलेगी अर्थव्यवस्था की सूरत?
एक ये सिग्नल आना चाहिए था कि जो डिसीजंस जिनको बोल्ड कहा जाता है उसकी शुरुआत बजट से होनी जरूरी थी, वो मुझे दिखाई नहीं दी।
और खास रिपोर्ट में बात अफगानिस्तान की उस महिला की जिसने भारत को बना लिया है अपना घर।
बार बार रिफ्यूजी बोलने के लिए यही फीलिंग आए कि आप दोस्त तो है मगर घर में नहीं बुलाया है।
खबरें खेल की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार भूमिका राय से। परमाणु मामलों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA का कहना है कि ईरान की स्थिति पर चर्चा के लिए उसने बुधवार को विशेष बैठक बुलाई है। ईरान ने साल 2015 में हुए परमाणु समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए संवर्धित यूरेनियम की मात्रा की सीमा को पार कर लिया था। ईरान ने कुछ ही दिनों के भीतर संवर्धन प्रक्रिया को और तेज करने की धमकी भी दी थी। ईरान का कहना है कि वो ये कार्रवाई अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमरीका को परमाणु समझौते से अलग करने और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने के जवाब में कर रहा है। अमरीका की 15 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने विंबलडन में एक सेट हारने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए जीत हासिल की और अंतिम 16 में अपने लिए जगह बना ली। इस जीत के बाद कोको ने कहा,
Right now I'm just super relieved that it's over. It was a long match. She was playing unbelievable.
मैं राहत की सांस ले रही हूं कि ये मुकाबला खत्म हो गया। ये एक लंबा मैच था, वो अविश्वसनीय खेल रही थी। सेंटर कोर्ट पर ये मेरा पहला मैच था। लोग कह रहे हैं कि कोर्ट 1 मेरा कोर्ट है, लेकिन शायद सेंटर कोर्ट भी मेरा ही कोर्ट है। दर्शक शानदार थे, मैं एक पॉइंट से नीचे थी तब भी वो मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अगले साल होने वाली जनगणना में नागरिकता के सवाल को जोड़ने के लिए वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया है। अदालत ने इस प्रस्ताव के पीछे दिए गए तर्कों पर सवाल खड़े किए थे। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अमरीका में रह रहे विदेशी लोगों की संख्या स्थापित करने के लिए ये सवाल पूछा जाना जरूरी है। वहीं न्याय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सवाल शामिल किया जाए या नहीं, इसे लेकर वो अभी भी इस बारे में दिए गए तर्कों की समीक्षा कर रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ने कहा कि इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या अधिकारी नस्लीय भेदभाव से प्रेरित हैं। अमेरिका का संविधान जनगणना पर नजर रखने का अधिकार कांग्रेस को देता है। संवाददाताओं का कहना है कि यदि इस विषय पर राष्ट्रपति का सीधा आदेश आता है तो इससे नया संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मैक्सिको के अभियोजकों का कहना है कि सरकारी तेल कंपनी पेमेक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। एमिलियो लोजोया पर ब्राजील की निर्माण कंपनी ओडेब्रेख्त ने रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। अभियोजकों का कहना है कि लोयोजा की पत्नी, माँ और बहन भी इसी मुकदमे में वांछित हैं। उनके वकील ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो वारंट रद्द करने के लिए अपील करेंगे। लोयोजा पूर्व राष्ट्रपति एनरिको पेना नीटो के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक थे। पूर्व राष्ट्रपति का नाम इस मुकदमे में शामिल नहीं है। अमरीकी प्रांत अलास्का, जिसका कुछ हिस्सा आर्कटिक सर्कल में आता है, में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये इस इलाके के लिए उच्च तापमान का नया रिकॉर्ड है। अमरीकी मौसम विभाग के मुताबिक 4 जुलाई को एंकोराज एयरपोर्ट पर पारा 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। इससे पहले का सर्वोच्च तापमान 30 डिग्री से नीचे था। साल के इस समय यहां औसतन तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। हाल के सालों में अलास्का में नाटकीय रूप से बढ़े तापमान की वजह से स्थानीय जनजीवन, वन्य जीवन और अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया में संघर्ष विराम की मांग की है। परिषद ने एक प्रवासी हिरासत केंद्र पर हुए हवाई हमले की भी निंदा की है। इस हमले में 50 से अधिक लोग मारे गए थे। परिषद ने राजधानी त्रिपोली के पास लड़ रहे सभी पक्षों से तुरंत हिंसा रोकने और समझौते की दिशा में काम करने के लिए कहा है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार, भारत में आज बात होगी आम बजट की। वर्ल्ड कप पर भी नजर डालेंगे और टेनिस के चैंपियन खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन कल विंबलडन में रहा इसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। जैसा अभी आपने समाचारों में भूमिका राय से सुना, ईरान के परमाणु मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA ने बुधवार को एक बैठक बुलाई है। ये बैठक अमरीका की मांग पर बुलाई गई है। इसके पहले ही अमरीका और ब्रिटेन के साथ ईरान का तनाव बढ़ गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिलनवाज पाशा।
संयुक्त राष्ट्र की परमाणु मामलों पर निगरानी रखने वाली संस्था IAEA ने कहा है कि उसने ईरान मामले पर चर्चा के लिए बुधवार को विशेष बैठक बुलाई है। ईरान ने हाल ही में 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत तय की गई सीमा का उल्लंघन करते हुए संवर्धित यूरेनियम की मात्रा को बढ़ा दिया था। बुधवार को दिए गए एक बयान में ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा था कि ईरान जितना चाहेगा उतना यूरेनियम संवर्धित करेगा। हम अपनी उस प्रतिबद्धता को किनारे रख जितना चाहेंगे उतना यूरेनियम संवर्धित करेंगे। जितनी हमारी जरूरत होगी हम यूरेनियम संवर्धित करेंगे। हम इसे 3.67 से ऊपर ले जाएंगे। वहीं जब ट्रंप से पूछा गया कि वो ईरान को क्या संदेश देना चाहते हैं तो उन्होंने पत्रकारों से कहा था, ईरान के लिए कोई संदेश नहीं है। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो आग से खेल रहे हैं। इसलिए ईरान के लिए किसी तरह का कोई संदेश नहीं है। इसी बीच ईरान का एक बड़ा तेल टैंकर जिब्राल्टर में रोक लिया गया है। ये अब जिब्राल्टर के तट पर खड़ा है। जिब्राल्टर के प्रशासक फेवियन पिकार्डो ने बताया कि टैंकर को सीरिया से जुड़े यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की वजह से रोका गया है। उन्होंने कहा, जिब्राल्टर ने जो कदम उठाया है उनका अमेरिका की ओर से उठाए गए मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। हम 2012 से लागू एक पुराने नियम के तहत कार्रवाई कर रहे हैं जिसके तहत यदि सीरिया पर लगाए प्रतिबंधों का उल्लंघन होता है तो हमारा कार्रवाई करना अनिवार्य हो जाता है। इसी बीच अपना तेल टैंकर रोके जाने के बाद ईरान ने कहा है कि वो अपने ऊपर धौंस जमाने वालों को जवाब देना जानता है। ईरान की शूरा समिति के सचिव मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यदि ब्रिटेन ईरान के सुपर तेल टैंकर को नहीं छोड़ता है तो ईरान को भी ब्रिटेन के एक तेल टैंकर को पकड़ लेना चाहिए। जिब्राल्टर में ये ईरानी टैंकर रोके जाने के बाद से ब्रिटेन और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ गया है। अमरीका और ईरान के बीच तनाव पहले ही सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा हुआ है। ऐसे में बुधवार को होने जा रही IAEA की बैठक बेहद अहम होगी। इसमें लिए गए फैसले मध्य पूर्व के हालात को प्रभावित कर सकते हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। रुख भारत का और बात बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल आम बजट पेश किया। पिछले बजट तक वित्त मंत्री एक ब्रीफकेस में बजट लेकर आते थे, लेकिन निर्मला सीतारमण ने इस परंपरा को बदला। वो बही खाते की तरह यानी लाल कपड़े में दस्तावेज लेकर पहुंची। उन्होंने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की योजनाओं की तारीफ की और भविष्य की योजनाओं का खाका इस बजट के जरिए पेश किया। ये बजट भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव ला सकता है? बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने यह सवाल किया आर्थिक मामलों की पत्रकार पूजा मेहरा से।
इस बजट को लेके पहली अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है कि जो हमारी सरकार है वो उसका रुझान थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा रहेगा और इकॉनमी को जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो कि काफ़ी सालों से और 2-3 सरकारों के समय से अभी पेंडिंग हैं वो पेंडिंग ही रहेंगे। एक ये सिग्नल आना चाहिए था कि जो डिसीजंस जिनको बोल्ड कहा जाता है उसकी शुरुआत बजट से होनी ज़रूरी थी, वो मुझे दिखाई नहीं दी। जो बजट के एकदम पहले इकोनॉमिक सर्वे भी आया उसमें भी कहा गया कि एक बड़ी अर्जेंसी है, जिसको कहा गया इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल स्पिरिट्स जो हैं इकॉनमी में, यानी कि जो लोग अपना पैसा लगाएं, नई फैक्ट्रीज खड़ी करें, नए बिजनेस शुरू करें, नए
काम करें, वो लोग नहीं वो रिस्क लेना चाह रहे हैं, वो लोग रिस्क लेना शुरू करें उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, नहीं तो लोग जो एनिमल स्पिरिट्स हैं वो रिवाइव नहीं होंगे। वो डिसीजन मुझे जो है बजट में तो नहीं दिखाई दिए।
और हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन में जो ज़मीन पर जो ज़रूरतें हैं, खासकर जिस तरह से बिहार में इतने सारे ढेर सारे बच्चों की मौत हुई, रूरल गाँव में क्या हाल है, वहाँ पर कैसे सुधारा जाए, इस पर बात नहीं। और मुझे लगा था, उम्मीद थी कि उस पर थ्रस्ट होगा इस बार सरकार का।
जी, मुझे भी ये बात थोड़ी अजीब लगी कि एक ऐसा बजट और एक ऐसी सरकार जो गाँव के लोगों को मद्देनज़र रख के अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाती है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ बनाती है, पॉलिसीज़ उस तरह से अनाउंस करती है, उन्होंने इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, 150 से ज़्यादा बच्चों की जाने गई, और वो भी इसलिए कि इसमें बहुत बड़ा कारण एक मैल न्यूट्रिशन बताया जा रहा है, और हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज उतनी नहीं है जितनी ज़रूरत है बिहार जैसे एक स्टेट में। तो ये एक चीज़ बजट में इसका मेंशन ज़रूर आना चाहिए था।
आखिरी सवाल आपसे, नौकरियां कैसे लोगों को मिलें, कैसे लोग अपने धंधे शुरू करें, इस पर काफ़ी जोर रहा है, जैसे स्किल इंडिया या स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रम हैं, इस पर बात हुई है, जैसे एक टीवी चैनल एक्सक्लूसिवली फॉर स्टार्टअप्स की बात हुई है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात हुई है, ये क्या काफ़ी है और इसका क्या असर होता दिख रहा है, और इस बजट में क्या उसको पुश मिला है आपको आपके हिसाब से?
देखिए, अगर स्टार्टअप टीवी चैनल देखेगा तो वो स्टार्टअप क्या बिजनेस करेगा, किसी के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो टीवी देख के अपना जो है बिजनेस करे। तो ये उस हिसाब से अच्छा है कि आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बात के लेके सेंसिटिव हैं, वो ठीक है, लेकिन इसका मोटे मोटे तौर पे ज़मीन पे कितना असर पड़ेगा, वो ज़्यादा असर इन चीज़ों से पड़ेगा कि आपके जो लेबर लॉज हैं, जो जिसकी वजह से जो हमारी कंपनियां हैं वो 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा नहीं रखती हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल तक उनका साइज़ उतना ही रहता है, वो बड़ी नहीं होती हैं हमारी कंपनियाँ, जिस वजह से नौकरियाँ नहीं निकलती हैं हमारी कंपनियों में से ज्यादा।
ये थी आर्थिक मामलों की पत्रकार पूजा मेहरा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान जीरो बजट खेती की भी बात की। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत लंबे वक्त से इसकी वकालत करते रहे हैं। बीबीसी संवाददाता सर्वप्रिया सांगवान ने उनसे बात की।
देखिए, जीरो बजट खेती ये प्राकृतिक कृषि है जो भारत में परंपरागत ढंग से हजारों साल हुई है। इसमें एक देसी गाय से हम 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं। जितना उत्पादन रासायनिक खेती से होता है इससे भी उत्पादन उतना ही रहेगा। रासायनिक खेती में लागत बहुत आती, इसमें लागत न के बराबर है। ड्रम ले लेते हैं प्लास्टिक का, उसमें 180 लीटर पानी डाल लेते हैं। देसी गाय रात और दिन में 8-7 किलो गोबर देती, 8-7 किलो गोमूत्र देती, वो उस पानी में मिलाते हैं। 1.5-2 किलो गुड़, 1.5-2 किलो किसी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी, इसका घोल बनाते हैं। 5 दिन इसको घोल लेते हैं, 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम घोलते हैं, तो 5वें दिन 1 एकड़ के लिए खाद तैयार है। हमारी प्राकृतिक खेती का क्या लाभ है? नंबर एक, ग्लोबल वार्मिंग आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है और इस के बढ़ावा देने में रासायनिक खेती का बहुत बड़ा योगदान है। प्राकृतिक खेती से पर्यावरण बचेगा, जमीन की उर्वरा शक्ति बचेगी, पानी की 60-70% बचत होगी। रासायनिक खेती करने से पहले देश में कैंसर को नहीं जानते थे, डायबिटीज को नहीं जानते थे, ऐसे अनेक असाध्य रोग पैदा हो गए हैं। हमारे खान पान में इतना रसायन और कीटनाशक जा रहे हैं जो स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं।
फिर वो क्या कारण है कि अभी तक किसानों के बीच में इतना लोकप्रिय नहीं है? जब ये
लोकप्रिय, अभी इस देश में लाखों किसान इसको करते हैं, लेकिन क्योंकि जब सरकार के यूनिवर्सिटीज के द्वारा रासायनिक खेती का प्रचार है तो अब भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया, तो अब तेजी से प्रचार बढ़ेगा।
ये थे आचार्य देवव्रत। बजट से किसानों को क्या हासिल हुआ है? सर्वप्रिया सांगवान ने ही ये सवाल किया पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री से।
पहली बार एक बजट ऐसा आया जिसमें कोई आंकड़े तो दिए नहीं। पहला बजट भाषण ऐसा है जिसमें से बजट निकल गया और भाषण ही भाषण बाकी। मेरी हमेशा से मान्यता रही है कि बजट तो संख्याओं का, राशियों का, विषय है। इतनी आय होगी, किसकी समझ में कहाँ जाएगी, तो कैसे इसका निर्णय किया जाए कि ये अर्थव्यवस्था को, खासतौर से खेती की व्यवस्था को गतिशीलता देने का कुछ काम करे।
फरवरी में पीयूष गोयल ने इंटरिम बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कही थी, जिसमें 6,000 रुपए सालाना किसान को दिए जाएंगे। क्या उससे कोई सुधार की उम्मीद है?
बहुत छोटे और सीमांत किसान है, उनको तो 6,000 का भी कुछ न कुछ तो सहारा लगेगा, कम से कम खाद बीज कुछ खरीदा जाए उससे। परंतु उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता। टैक्सेस इतने, अभी मैंने अपना ट्रैक्टर मरम्मत कराया तो उसके टायर के ऊपर 28% GST है। अभी 77,000 रुपए ट्रैक्टर की मरम्मत मिलेगी, उसके 14,800 तो केवल टैक्स ही टैक्स है। तो आपने अगर वो 6 दे भी दिया, किसान को 2 साल बाद अपना ट्रैक्टर मरम्मत कराना हुआ तो क्या मिलेगा उसमें?
जीरो बजट खेती की काफी बात हो रही है इस बजट के बाद,
तो मैं ये तो मान सकता हूँ कि उसमें उर्वरक नहीं लगे, दवा नहीं लगे, परंतु लेबर भी नहीं लगेगी क्या? बीज भी नहीं लगेगा क्या? सिंचाई के लिए जो बिजली पानी की या दूसरी व्यवस्था, उसका खर्चा नहीं लगेगा क्या? जीरो बेस क्या होता है समझ में नहीं आता।
सरकार ने 2022 तक का लक्ष्य रखा है कि वो किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे।
5 साल में इन्होंने कहा था कि 2022 तक करेंगे, तो 3 साल बचे हैं। 3 साल में अगर दोगुनी करनी है तो कम से कम 30% या 28% प्रति वर्ष उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। पिछले 2 वर्ष में तो कोई लक्षण दिखाई दिया नहीं।
क्या किया जा सकता था या क्या किया जा सकता है?
एक तो ये हो सकता है कि जो खेती की जमीन है वो प्रति जोत की इकाई दोगुनी हो जाए। वो भारत की परिस्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि कोई खाली जमीन नहीं है। दूसरा ये है कि खर्चे यानी लागत उतने ही रहें और उसकी जिंस का दाम जो है वो दोगुना कर दिया जाए। वो भी यहाँ नहीं हुआ, जैसे यूरोपीय देशों में किया जाता है, जिसको किसान को सीधे वो नकद राशि देते हैं। जैसे मैंने स्विट्जरलैंड का देखा, डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम कहते हैं। स्विट्जरलैंड में 2,993 यूरो जो है, इसका मतलब हो गया करीब आज की तारीख में 2,10,000 से 2,20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर प्रति किसान बंधी हुई आय सरकार की तरफ से जाती है, और अपने उत्पाद को वो बाजार में चाहे जिस मर्जी दाम से बेचे। उसके मुकाबले में आप भारतीय किसान को दे रहे हैं 6,000 रुपया और उसको कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो यूरोप के या अमेरिका के किसान से प्रतिस्पर्धा कर ले।
ये थे सोमपाल शास्त्री और उनसे बात कर रही थी सर्वप्रिया सांगवान। और अब आज के अखबारों की बात दिलनवाज पाशा के साथ। तो दिलनवाज, बजट छाया हुआ है अखबारों में?
जी वास्तव, कहीं निर्मला सीतारमन जोरदार बल्लेबाजी करती दिख रही हैं, तो कहीं उन्हें नारी ही नारायणी के रूप में पेश किया गया है।
यानी आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं अखबारों
जी,
में?
जी बिल्कुल, अखबारों के पन्ने पर अलग अलग तरीके से निर्मला सीतारमन की तस्वीर है। और कल जब वो संसद भवन में ब्रीफकेस की जगह जो है
पार्टी
बही खाता लेकर गई, तो उसका भी अखबारों में जिक्र है। उस तस्वीर को भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। मेरे हाथ में है हिंदुस्तान, जो लिखता है अमीर पर कर, गरीब पर करम। इस बजट की जो है समीक्षा इस रूप में अखबार ने की है। पंजाब केसरी ने लिखा है निर्मला की जोरदार बल्लेबाजी और स्ट्रोक लगाती हुई निर्मला दिख रही है। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय वर्ल्ड कप में खेल रही है। मुझे लगता है कि इन तस्वीरों की प्रेरणा शायद वहीं से ली गई है। और नवभारत टाइम्स ने लिखा है दूसरी पारी विराट तैयारी, एक और निर्मला सीतारमन है और साथ में बल्लेबाजी करने जाते नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का बयान प्रकाशित है, लिखते हैं यह है भारत को पावर हाउस बनाने वाला बजट है जो 21वीं सदी के सपने को पूरा करेगा। इससे आम लोगों की जिंदगी आसान होगी, पर्यावरण के संरक्षण से यह ग्रीन बजट भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण का अंश प्रकाशित किया है। मेरे हाथ में दैनिक जागरण है, जो लिखता है नए भारत की ओर। भारत की एक तस्वीर है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमन रंग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ में ब्रश है और निर्मला सीतारमन के हाथ में पेंट। अखबार ने,
यानी आप जो हेडलाइंस देख रहे हैं, अखबारों को देख रहे हैं, ज्यादातर बजट को पॉजिटिव।
जी बिल्कुल, दैनिक जागरण ने तो लिखा है लक्ष्य तय कर आगे बढ़ना और अपनी छवि बरकरार रखना, शायद इसे ही कहते हैं नरेंद्र मोदी सरकार। 2 के पहले बजट ने बड़ी और नई लोक लुभावन घोषणाओं से बचते हुए केवल उन्हीं बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित रखा है जो सरकार का मूल मंत्र है।
लेकिन जिस तरह से अर्थशास्त्री बात कर रहे हैं कि इस बजट में कहां से आमदनी होगी, कहां खर्च होगा, इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है।
इसका ब्यौरा अखबारों के कम से कम पहले पन्ने पर तो नहीं दिख रहा है।
नहीं, ये ब्यौरा बजट में भी नहीं है। कई बार लोगों ने इस बात को उठाया है, क्या अखबारों ने इन चीजों को हाईलाइट किया है?
जी, पहले पन्ने पर तो ये प्रश्न उठता नहीं दिख रहा है। अमर उजाला की का जिक्र करूं तो शीर्षक है, तिजोरियों से निकालकर झोलियों में डाली रकम, तो ये भी एक सकारात्मक शीर्षक है। दैनिक भास्कर लिखता है, मध्यम वर्ग को आभार, अमीरों पर कर का भार। और हिंदुस्तान टाइम्स ने शीर्षक दिया है, अधिकार कर्तव्य से लेकर 5,000 अरब उम्मीदों तक।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की समीक्षा के लिए, बजट की जानकारी देने के लिए।
बीबीसी इंडिया बोल।
वित्त मंत्री ने दिया रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का सुझाव, लेकिन क्या रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना सही होगा? क्या होंगे इसके दूरगामी परिणाम? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस शनिवार 6 जुलाई को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें इन टोल फ्री नंबरों पर 1811-7000 और 1800-102-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब एक खास रिपोर्ट। अफगानिस्तान की एक महिला को तालिबान के डर से भारत आना पड़ा। उनके लिए हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद और हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा। उनके अब तक के सफर पर इस्मत आरा की रिपोर्ट सुनिए बीबीसी संवाददाता सिंधु वासनी से।
रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। मिर्जा गालिब का ये शेर तालिबान से बचकर भारत आई गुलजान की जिंदगी को बयां करता है। गुलजान साल 2015 में अफगानिस्तान से अपनी जान बचाकर भारत आई थी। वो अफगानिस्तान के एक अस्पताल में काम करती थी, जहां उनकी तालिबान के एक सदस्य से झड़प हो गई और उनकी जान को खतरा पैदा हो गया। नतीजन उन्हें अपना घर बार छोड़कर अचानक भारत आना पड़ा।
अगर इस तरह सिचुएशन आ जाए कि घर को इतने अच्छा से सेटअप करे, सब कुछ सीधे, सब कुछ अच्छा है, अचानक तो एक कपड़ा पहन करके निकल जाएंगे तो क्या फील करेंगे?
हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, मगर गुलजान ने भरोसे का हाथ नहीं छोड़ा। जब वो भारत आई, उनके साथ उनका 6 महीने का बच्चा भी था। आज वो बच्चा फर्राटे से हिंदी बोलता है और स्कूल जाने के लिए तैयार है। गुलजान खुद भी अच्छी हिंदी बोल लेती हैं।
अपने आप को कभी फील नहीं किया था कि जब खुद रिफ्यूजी बन जाएगी कैसी हालत होगा, तो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हम भी फील किया, हम भी फेस किया।
गुलजान के पास फटे पुराने कपड़ों को जोड़कर खूबसूरत गुड़िया बनाने का हुनर है। इसी हुनर और मेहनत की बदौलत उन्हें भारत के एक एंटरप्राइज में काम मिला और आज वो 20 दूसरी अफगान औरतों के काम को भी सुपरवाइज करती हैं। अब उन्हें इस मुल्क यानी हिंदुस्तान से मोहब्बत भी हो गई है। इन सब के बावजूद गुलजान को शरणार्थी होने के दर्द का एहसास कभी कभार हो ही जाता है। वो मानती है कि किसी दूसरे वतन में रिफ्यूजी होना कुछ ऐसा है जैसे आप अपने दोस्त के घर में तो हैं, मगर दोस्त ने आपको बुलाया नहीं है।
इस तरह फीलिंग आते है कि बार बार रिफ्यूजी करने के बोलने के लिए यही फीलिंग आए कि आप दोस्त तो है मगर घर में नहीं बुलाया है, मजबूरी से हम रह रहे हैं, तो ये फीलिंग अच्छा नहीं लगती है कि कब तक इस तरह गुजारा करें। दोस्त का भी पसंद नहीं हो कि उनकी घर में रहती हो, मगर खुद भी फीलिंग अच्छा नहीं है।
आगे क्या होगा गुलजान खुद भी नहीं जानती, मगर उम्मीद पर दुनिया कायम है और यही उम्मीद लिए गुलजान अपनी जिंदगी कायम रखे हैं।
इस्मत आरा की रिपोर्ट, जिसे पेश कर रही थी सिंधु वासनी। उधर वर्ल्ड कप में आज भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी। ये मैच लीड्स में है और बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव भी वहां मौजूद हैं। हमारी सहयोगी सर्वप्रिया सांगवान ने नितिन श्रीवास्तव से बात की और सबसे पहले वहां के मौसम के बारे में पूछा।
देखिए, कल दोपहर के बाद से हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर काफी ज्यादा बादल छाए हुए थे, बारिश होने की संभावना की जा रही थी, लेकिन बारिश हुई नहीं है कल से शाम से रात तक। लेकिन आज के प्रेडिक्शन में यह है कि मैच अनइंटरप्टेड होने की उम्मीद है, लेकिन स्पोरैडिक रेन की बात की जा रही है, बट ऐसा लग रहा है कि गेम हो जाएगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मौसम बेहतर चल रहा है और आगे भी वैसी उम्मीद की जाए।
विजय शंकर की जगह मयंक अग्रवाल को लेकर आया गया है, क्या उम्मीद है कि इस बार वो खेलेंगे?
तमाम तरह के कयास लग रहे हैं और उसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये लग रही है कि जो दिनेश कार्तिक है उनको ज्यादा मौके नहीं मिल पाए हैं, शायद उनको मौका दिया जाए। उसके अलावा दो ऐसे प्लेयर हैं, रविंद्र जडेजा और मयंक, जो अभी हाल ही में ज्वाइन किया है जैसा आपने कहा उन्होंने टीम को, जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है इस टूर्नामेंट में, तो अब जब इसके बाद बड़े मैचेस हैं, नॉकआउट मैचेस हैं, सेमीफाइनल या फाइनल अगर सेमीफाइनल जीतती है इंडिया, तो और इंजरीज को देखते हुए, किसी प्लेयर को अचानक लगी हुई चोट को देखते हुए, इंडियन टीम ये सोच रही होगी कि रविंद्र जडेजा, मयंक और दिनेश कार्तिक को और ज्यादा मैच प्रैक्टिस, मतलब एक्चुअल मैच प्रैक्टिस करा दी जाए। लेकिन वो इसके साथ ही एक स्पिनर को लेकर भी शायद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो हो सकता है कि पिछले मैच में चहल को मौका मिला था, इस बार कुलदीप को मौका मिले।
टीम प्रैक्टिस से क्या नजर आ रहा है?
ये जाहिर है लास्ट मैच है, और अगर इंडिया इस मैच को जीतती है और ये उम्मीद करती है कि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका हरा दे, तो इंडिया पॉइंट टेबल में एक्चुअली नंबर एक पर आ सकती है, और उस सिनेरियो में इंडिया को चौथे नंबर पर जो टीम होगी उसके साथ सेमीफाइनल खेलना होगा। तो भारत की कोशिश यही होगी कि ये दोनों चीजें उनके हिस्से में आए।
भारत तो सेमीफाइनल में पहुंच गया है, श्रीलंका बाहर हो गई है।
ग्राउंड रियलिटी ये है कि आखिरी मैच के पहले इंडिया कंफर्टेबली चुकी सेमीफाइनल में आ चुकी है, तो एक्साइटमेंट में डेफिनेटली थोड़ी सी कमी है। बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर, फैंस वगैरह जिनसे हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि अगर उम्मीद ये की जा रही थी कि लास्ट मैच श्रीलंका तक आके नेल बाइटिंग होगा, तो इसलिए ये मैच शायद फैसला करता, लेकिन वैसा अब नहीं है। तो श्रीलंका के कोच से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि उनकी टीम काफी बुरे दौर से गुजरी इस टूर्नामेंट में, लेकिन वो जाने के पहले एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिसमें इंडिया को हराना जाहिर सी बात है बहुत ऊपर है। तो उस सब को देखते हुए मैच इंटेंस होने की उम्मीद की जा रही है।
ये थे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव, जो कह रहे थे कि भारत और श्रीलंका के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और अब वर्ल्ड कप और विंबलडन की बाकी खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 94 रन से हराया। बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 316 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी पारी 44.1 ओवर में 221 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने 64 और लिटन दास ने 32 रन बनाए। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने 35 रन देकर 6 और शादाब खान ने 59 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 315 रन बनाए। पाकिस्तान के इमामुल हक ने पूरे 100 रनों की शतकीय पारी खेली। उनके अलावा बाबर आजम ने 96 और इमाद वसीम ने 43 रन बनाए। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने 75 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। विश्व कप में आज भारत का सामना श्रीलंका से और ऑस्ट्रेलिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इन मैचों के बाद ही पता चलेगा कि सेमीफाइनल में पहुंच चुकी ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में कौन किसका सामना करेगा। इस मुकाबले को लेकर भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक कहते हैं,
The semi-final are mine. I think that's a big game for us. For all the four teams that qualify, it's going to be a massive game. So that's at the back of the mind. But having said that, I think we are professional enough to, go out there against Sri Lanka and play a very clinical game.
उधर विंबलडन में कल पुरुष एकल वर्ग में बड़ा उलटफेर हुआ और चौथी वरीयता हासिल दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन, 26वीं वरीयता हासिल अर्जेंटीना के गुइडो पेला से 6-4, 6-3, 7-6 से हार गए। एंडरसन पिछले साल फाइनल में पहुंचे थे। उनके अलावा रूस के मेदवेदेव और इटली के थॉमस फेबियानो के अलावा महिला एकल वर्ग में डेनमार्क की कैरोलिने वोज़नियाकी भी तीसरे दौर में हार कर बाहर हो गई। लेकिन शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और बेल्जियम के डेविड गोफिन और महिला वर्ग में रोमानिया के सिमोना हालेप और यूक्रेन की इलीना स्वीटोलिना जीत कर चौथे दौर में पहुँच गए।
और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में अभियान खत्म हो गया। इसके साथ ही पाकिस्तान के ऑलराउंडर शोएब मलिक ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और अब चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। परमाणु मामलों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA का कहना है कि ईरान की स्थिति पर चर्चा के लिए उसने बुधवार को विशेष बैठक बुलाई है। अमेरिका की 15 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने विंबलडन में एक सेट हारने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए जीत हासिल की और अंतिम 16 में अपने लिए जगह बना ली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगले साल होने वाली जनगणना में नागरिकता के सवाल को जोड़ने के लिए वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया में संघर्ष विराम की मांग की है। परिषद ने एक प्रवासी हिरासत केंद्र पर हुए हवाई हमले की निंदा भी की है। अमरीकी प्रांत अलास्का, जिसका कुछ हिस्सा आर्कटिक सर्कल में आता है, में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी दीपक जसरोटिया के हाथ। शाम के वक्त 7:30 बजे इंडिया बोल में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।